सूरदास जी अपने भाव में मग्न रहने वाले थे, अपने चारों ओर की परिस्थिति की आलोचना करने वाले नहीं। संसार में क्या हो रहा है, लोक की प्रवृत्ति क्या है, समाज किस ओर जा रहा है, इन बातों की ओर उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया है। तुलसीदास जी लोक की गति के सूक्ष्म पर्यालोचक थे। वे उसके बीच पैदा होने वाली बुराइयों को तीव्र दृष्टि से देखने वाले थे। जिस प्रकार उन्होंने अपने समय की जनता के दुर्दशा और दुर्वृत्ति तथा मर्यादा के ह्रास पर दृष्टिपात किया है, उसी प्रकार लोक मर्यादा के ह्रास में सहायता पहुंचाने वाली प्रच्छन्न शक्तियों को भी पहचाना है। इस प्रकार उन्होंने कबीर, दादू आदि के लोक विरोधी स्वरूप को पहचान कर उनके उद्धत व्यक्तिवाद के विरुद्ध घोषणा की। यह हम गोस्वामी जी की आलोचना में दिखा चुके हैं। सूरदास जी अपने भाव भजन और मंदिर के नित्य गीत में लीन रहते थे। इन सब अंदेशों से बहुत दुबले नहीं रहते थे, पर निर्गुण वाणी की जो हवा बह रही थी उसकी ओर उनके कान अवश्य थे। तुलसी की आलोचना में हम सूचित कर चुके हैं कि तुलसी का ब्रज भाषा और अवधि दोनों काव्य भाषाओं पर तुल्य अधिकार था, और उन्होंने जितनी शैलियों की काव्य रचना प्रचलित थी उन सब पर बहुत उत्कृष्ट रचना की है। यह बात सूर में नहीं है। सुरसागर की पद्धति पर वैसी ही मनोहारिणी और सरस रचना तुलसी की गीतावली मौजूद है, पर रामचरितमानस और कवितावली की शैली की सूर की कोई कृति नहीं है। इसके अतिरिक्त मनुष्य जीवन की जितनी अधिक दशाएं, जितनी अधिक वृत्तियां तुलसी ने दिखाई है उतनी सूर ने नहीं। तुलसी ने अपने चरित्र चित्रण द्वारा जैसे विविध प्रकार के ऊंचे आदर्श खड़े किए हैं, वैसे सूर ने नहीं। तुलसी की प्रतिभा सर्वतोमुखी है और सूर की एकमुखी, पर एकमुखी होकर अपने उसने अपनी दिशा में जितनी दूर तक की दौड़ लगाई है उतनी दूर तक की तुलसी ने भी नहीं, और किसी कवि की तो बात ही क्या है। जिस क्षेत्र को सूर ने चुना है उस पर उनका अधिकार अपरिमित है, उसके वे सम्राट हैं। सूर की विशेषताओं के इस संक्षिप्त दिग्दर्शन को समाप्त करने के पहले इतना और कह देने को जी चाहता है कि सूर में सांप्रदायिकता की छाप तुलसी की अपेक्षा अधिक है। अष्टछाप में वे थे ही, उन्होंने अनन्य उपासना के अनुसार कृष्ण या हरि को छोड़ और देवताओं की स्तुति नहीं की है। ग्रंथारंभ में भी प्रथानुसार गणेश या सरस्वती को याद नहीं किया है, पर तुलसीदास जी की वंदना कितनी विस्तृत है यह रामचरितमानस और विनय पत्रिका के पढ़ने वाले मात्र जानते हैं। उनमें लोक संग्रह का भाव पूरा पूरा था। उनकी दृष्टि लोक विस्तृत थी, जन समाज के बीच या कम से कम हिंदू समाज के बीच परस्पर सहानुभूति और सम्मान का भाव तथा सुखद व्यवस्था स्थापित देखने की अभिलाषा भी उनमें बहुत कुछ थी। शिव और राम को एक दूसरे का उपासक बनाकर उन्होंने शैवों और वैष्णवों में भेद बुद्धि को रोकने का प्रयत्न किया था, पर सूरदास जी का इन सब बातों की ओर ध्यान ही नहीं था। जो तुलसीदास जी के ग्रंथों को पढ़ता है वह उन्हें देवताओं से उदासीन भी नहीं समझता, उनका शत्रु और द्रोही समझना तो दूर रहा। इतने पर भी कुछ लोगों ने वनवास के करुण प्रसंग के भीतर अथवा राम के महत्व आदि की भावना में लीन करने वाले किसी पद में सुर, स्वार्थी आदि शब्द देखकर यह कहना आदि जरूरी समझा है कि सूर ने तुलसी के समान देवताओं को गालियां नहीं दी। इस पर यही समझकर रह जाना पड़ता है कि यह मत वैलक्षण्य के प्रदर्शन का युग है। सूर की विशेषताओं पर स्थूल रूप से इतना विचार करने के उपरांत अब हम उनकी उस संगीत भूमि में थोड़ा प्रवेश करते हैं जो भ्रमर गीत सार के नाम से प्रसिद्ध है, और जिसमें वचन की भाव प्रेषित वक्रता द्वारा प्रेम प्रसूत न जाने कितनी अंतर्वृत्तियों का उद्घाटन परम मनोहर है। भ्रमर गीत का प्रसंग इस प्रकार आया है। श्री कृष्ण अक्रूर के साथ कंस के निमंत्रण पर मथुरा गए और वहां कंस को मारकर अपने पिता वासुदेव का उद्धार किया। इसी बीच में कुब्जा नाम की कंस की एक दासी को उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने अपने प्रेम की अधिकारिणी बनाया। जब अवधि बीत जाने पर भी वे लौट कर गोकुल न आए तब नंद, यशोदा तथा सारे ब्रजवासी बड़े दुखी हुए। उन गोपियों के विरह का क्या कहना है जिनके साथ उन्होंने अपनी किरणाएँ की थी। बहुत दिनों पीछे श्री कृष्ण ने ज्ञानोपदेश द्वारा गोपियों को समझाने बुझाने के लिए अपने सखा उद्धव को ब्रज में भेजा। उद्धव ही को क्यों भेजा, कारण था कि उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। प्रेम या भक्ति मार्ग की वे अपेक्षा करते थे। कृष्ण पर उन्हें गोपियों के पास भेजने में यह अभिप्राय था कि वे अपने प्रीत की गूढ़ता और तन्मयता देखकर शिक्षा ग्रहण करें और सगुण भक्ति मार्ग की सरसता और सुगमता के सामने अब उनका ज्ञान गर्व चूर हो। जदुपति जाने उद्धव रीति, जही प्रकट निज सखा कही यत करत भाव अनीति। विरह दुख जह ना ही जामत, ना ही उपजत प्रेम। रेख रूप न बरन जाके, यह धरियो वह नेम। त्रिगुण तन करी लखत हमको, ब्रह्म मानत और। बिना गुण क्यों पुह में उधरय, यह कहत मन डौर। विरह रस के मंत्र कहिए, क्यों चले संसार। कछु कहत यह एक प्रगटत, अति भरयो हंकार। प्रेम भजन न नेकु याके, जाय क्यों समझाय। सूर प्रभु मन यह आनी, ब्रजहि देह पठाय। त्रिगुण तन करी लखत हमको, ब्रह्म मानत और। इसी भ्रम का निवारण करना चाहते थे। जगत से ब्रह्म को सदा अलग मानना, जगत की नाना विभूतियों में उसे न स्वीकारना स्वीकार करना भक्ति मार्गियों के निकट बड़ी भारी भ्रांति है। अहमात्मा गुड़ाकेश सर्वांग भूताशेष स्थित है। इस भगवद वाक्य को मन में बैठाए हुए भक्त जन गीता के इस उपदेश के अनुसार भगवान के व्यक्त स्वरूप की ओर आकर्षित रहते हैं। उद्धव बात बात में एक प्रकटत अद्वैतवाद का राग अलापते थे और विरह रस के मंत्र कहिए, क्यों चले संसार। रसविहीन उपदेश से लोक व्यवहार कैसे चल सकता है, रसविहीन उपदेश किस प्रकार असर नहीं करते, यही दिखाने को भ्रमर गीत की रचना हुई। उद्धव के ब्रज में दिखाई पड़ते ही सारे ब्रजवासी उन्हें घेर लेते हैं। वे नंद यशोदा से संदेशा कह चुकने के उपरांत गोपियों की ओर फिर कर कृष्ण के संदेश रूप में ज्ञान चर्चा छेड़ते हैं। इसी बीच एक भौरा उड़ता उड़ता गोपियों के पास आकर गुनगुनाने लगता है। यही अंतर मधुकर इक आयो, निज स्वभाव अनुसार निकट हुई। सुंदर शब्द सुनायो, पूछन लागता ही गोपी का। कुबजा तो ही पठायो, केधव सूर्य श्याम सुंदर को। हमें संदेश हो लायो। फिर तो गोपियां मानो उसी भ्रमर को संबोधन करके जो जो जी में आता है, खरी खोटी उल्टी सीधी सब सुना चलती है। इसी के इस प्रसंग का नाम भ्रमर गीत पड़ा है। कभी गोपियां उद्धव का नाम लेकर कहती हैं, कभी उसे भ्रमर को संबोधन करके कहती हैं। विशेषतः जब पुरुष और कठोर वचन से मुंह से निकालना होता है, श्रृंगार रस का ऐसा सुंदर उपालंब काव्य दूसरा नहीं है। उद्धव को देखते ही गोपियों को संबंध भावना के कारण कृष्ण के मिलने का सुख हुआ। उधो पालागो भले आए, तुम देख जन माधव देखे, तुम त्रय ताप नसाए। प्रिय के संबंध में बहुत से वस्तुएं प्रिय लगने लगती है, यही बात यहाँ अपने स्वाभाविक रूप में दिखाई गई है। इसी को बढ़ाकर बिहारी कुछ और दूर तक ले गए हैं। उनकी नायिका को नायक के भेजे हुए पंखे की हवा लगने से उल्टा और पसीना होता है, यह एक तमाशे की बात जरूर हो गई है। हित करी तुम पठयो लगे वा विजना की बाय, टरी तपनी तन की तऊ चली पसीने न्याय। सूर्य ने भी प्रिय की वस्तु पाकर सात्विक होना दिखाया है, पर तमाशे के रूप में नहीं, अत्यंत स्वाभाविक और मर्म स्पर्शी रूप में तथा अत्यंत अर्थ प्राचुर्य के साथ। उद्धव के हाथ से श्याम की पत्री राधा अपने हाथ में लेती हैं और निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावती छाती। लोचन जल कागद मसी मिलकर हुए गई श्याम श्याम की पाती। आंसुओं से भीग कर स्याही के फैलने से सारी चिट्ठी काली हो गई। इससे कृष्ण संबंध की भावना के कारण प्रबल प्रेमोद्रेक सूचित हुआ। आगे देखिए तो इस प्रेमोद्रेक की तीव्रता व्यंजित करने के लिए अंक और श्याम शब्दों में श्लेष कैसा काम कर रहा है। पत्री पाकर वैसा ही प्रेम उमड़ा जैसा कृष्ण को पाकर उमड़ता। कृष्ण की पत्री ही उनके लिए कृष्ण हो गई। जैसे वह कृष्ण के अंक को पाकर आलिंगन करती, वैसे ही कृष्ण के लिखे अंक उन्हें अक्षर को देख कर वह पत्री को बार बार हृदय से लगाती। यहाँ भावाधिपति सूर्य ने भावों का और आधिक्य व्यंजित करने के लिए शब्द श्यामी की सहायता ऐसे कौशल से ली है कि एक बार शब्दों का साधारण अर्थ लेने से जिस भाव की अधिकता सूचित हुई, फिर आगे उनका श्रेष्ठ अर्थ लेने से उसी भाव की और अधिकता व्यंजित हुई। इससे जो लाघव हुआ है, मजमून में जो चुस्ती आई है, वह तो है ही, साथ ही प्रेम के अंतर्भूत एक मानसिक दशा के चित्र का रंग कैसा चटकीला हो गया है। शब्द साम्य को उपयोग में लाने वाला सच्चा कवि कौशल यही है। यदि केशवदास के ढंग पर सूर भी यहाँ उक्त शब्द सामे को लेकर कृष्ण और पत्री की तुलना पर जोर देने लगते, कहते कि पत्री मानो कृष्ण ही है क्योंकि वह भी श्याम है और उसके भी अंग वक्षस्थल हैं, तो काव्य की रमणीयता कुछ भी न आती। राधा को वह पत्री जो कृष्ण के समान लग रही है, वह सादृश्य या साधर्म के कारण नहीं बल्कि संबंध भावना के कारण, कृष्ण के हाथ की लिखी होने के कारण। केवल शब्दात्मक साम्य को लेकर यदि हम किसी पहाड़ को कहें कि यह बैल है क्योंकि उसे भी श्रृंग है, तो यह काव्य कला तो न होगी। और कोई कला हो तो हो, क्या जरूरी है कि शब्दों की जितनी कलाबाजियाँ हों सब काव्य ही कहलाएं। गोपियाँ कहती हैं कि हमने इतने संदेश भेजे हैं कि शायद उनसे मथुरा के कुएं भर गए होंगे, पर जो संदेश लेकर जाता है वह लौटता नहीं। संदेश ने मधुबन कूप भरे, जो कूप थिक गए है यहाँ ते फिर नहीं आवन करे। कैवय श्याम सिखाय समोधे, कैवय बीच मरे। अपने नहीं पठवत नंद नंदन हमरे उफेर धरे, मसी खूंटी का गद जल भी जय सर दब लाग जरे। प्रिय से संबंध रखने वाले व्यक्तियों या वस्तुओं का प्रिय लगना ऊपर दिखाया गया है। इस पद में प्रेम विलासा के पूर्ति में जो वस्तुएं बाधक होती हैं, सहायक नहीं होती हैं या उपयोग में नहीं आती, उनके ऊपर बड़ी सुंदर झल्लाहट स्त्रियों की स्वाभाविक बोली में प्रकट की गई है। पथिक संदेशा लेकर गए पर न लौटे, न जाने कहाँ मर गए, कोई चिट्ठी भी नहीं आती है, मथुरा भर में स्याही ही चूक गई या कागज भीग कर जल गए अथवा सरकंडों में आग लग गई वे जल गए। जो कोई पथिक उधर से होकर निकलता है उसे रोक कर गोपियाँ अपना संदेशा कहने लगती हैं। अब तो यह दशा है कि उसी डर से पथिकों ने उधर से गुजरना आना जाना ही छोड़ दिया है। सूर्यदास संदेशन के डर पथिक न वामग जात, जो ही उद्धव अपना ज्ञान संदेश सुनाना आरंभ करते हैं त्यों ही गोपियाँ चकपका कर पूछने लगती हैं, हमसो कहत कौन सी बातें, सुर उदो हम समझत नाहीं फिर बुझती हैं ताते। कौन रिप भयो कंस किर मारियो, को वस्तुद्यो सुत का आही, यहाँ हमारे परम मनोहर जिजतु है मुख चाही। गोपियों की यह चकपकाहट उद्धव की बात की असंगति पर होती है। इसने ऐसा संदेशा भेजा है वह न जाने कौन है, परम प्रेमी कृष्ण तो हो ही नहीं सकते। इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह सचमुच उद्धव को कृष्ण का दूत नहीं समझ रही है, वह केवल विश्वास करने की अपनी अतत्परता और आश्चर्य मात्र व्यंजित कर रही है। कृष्ण के संबंध से उद्धव भी गोपियों को प्रिय और अनोखे लग रहे हैं, इसी से बीच बीच में वे उन्हें बनाने और उनसे परिहास करने लगती है। वे कृष्ण पर भी फबती छोड़ती हैं और उद्धव को भी बनाती हैं। उद्धव जाने ज्ञान तिहारो, जाने कहाँ राजगत लीला अंत अहिर विचारा, हम सब अयानी एक सयानी कुबजा सो मन मान्या, आवत ना ही लाज के मारे मानह कान किश्यान्यो। उद्धव जाहु बाह धरि लाइयो, सुंदर श्याम प्यारो, ब्याहो लाख धरो दस कुबरी अंत ही कान हमारो। परिहास के अतिरिक्त अंतिम चरण में प्रेम की उच्च दशा के औदार्य की कैसी साफ झलक है। उद्धव कहते जाते हैं पर गोपियों के मन में यह बात समाती ही नहीं, यह कृष्ण का संदेशा है। कभी वे कहती हैं उद्धव जाय बहुरी सुने आव हो, कहाँ कहे हो नंद कुमार। कभी कहते हैं श्याम तुम्हें ध्या ना ही पठाए, तुम हो बीच भुलाने। जब उद्धव बकते ही जाते हैं तब वे और भी बनाती हैं, कहते हैं कि जरा अपने होश की दवा करो। उद्धव तुम अपने जतन करो, हित की कहत कुहित की लागे, किन के बेकाज ररो, जाय करो उपजार आपनो, हम जो कहत हैं जी की, कछु कहत कछुए कही डारत, धनो देखियत नाही नीकी। बीच बीच में खिजला भी उठती हैं और कहते हैं कि तुम्हारे मुख कौन लगे, तुम तो सनक गए, वहां सिर खाने लगे थे तभी तुम्हें भेजकर कृष्ण ने अपना पल्ला छुड़ाया। साधु हो ते ही उत्तर दीजे, तुमसो मानी हारी, या ही ते तुम्हें नंद नंदन जो यहाँ पठाए टारी। फिर चित्त में कुछ विरोध वृत्ति के आ जाने पर कहती हैं भाई खूब आए, इस दुख दशा में भी अपने बेढब बातों से एक बार लोगों को हंसा दिया। उद्धव भली करी तुम्हें आए, ये बातें कही कही याद में ब्रज के लोग हंसाए। प्रेम के जिस हास क्रीड़ामय स्वरूप को सूर ने लिया है, विप्रलम्ब दशा के अश्रु और दीर्घ निश्वास के बीच बीच में बराबर उसकी क्षणिक और क्षीण रेखा झलक जाती है। श्याम गोपियों के पास नहीं हैं, उनके सखाई संयोग से उनके बीच आ फंसे हैं जो सदा उनके पास रहते हैं। बस यही संबंध भावना कृष्ण के संदेश की विलक्षणता के भावना के साथ मिलते ही रह रह कर थोड़ी थोड़ी देर के लिए वृत्ति को विनोदमय कर देती है। ऊधो हम आज भई बड़ भागी, बिसरे सब दुख देखत तुमको, श्याम सुंदर हम लागी, ज्यो दर्पण मधि दिग निरखत, जय हाथ तहाँ नहीं जाई, त्यों ही सूर हम मिली सांवरो, विरह बिथा बिसराई। मध्यस्थ द्वारा संयोग सूत्र का कैसा सुंदर स्पष्टीकरण सूर ने किया है, जो संबंध भावना बीच बीच में गोपियों की वृत्ति विरोधमय कर देती है, वह अभी अभी स्पष्ट शब्दों में निर्दिष्ट होकर सामने आ जाती है और पाठक उसे पहचान सकते हैं। जैसे मधुकर जानत है सबको, जैसे तुम अवमित तुम्हारे गुणन निपुण आओ दो, पाके चोर हृदय के कपटी तुम कारे औ वो। उद्धव को जो पक्की चोर और कपटी प्रेम के संबोधन मिल रहे हैं वो कृष्ण के संसार के प्रसाद से। ऐसे ही जनदूत कहावत, ऐसी प्रकृति परत ही छाह के जुवतिन ज्ञान बुझावत। गोपिया कहते हैं कि बैठे बैठे योग और ज्ञान का संदेश भेजने वाले कैसे हैं यह हम अच्छी तरह जानती हैं। हम तो निपट अहिरी बावरी जोग दीजिए ज्ञानिन, कहा कहत मामी के आगे जानत नाना नानिन। कृष्ण की संबंध भावना स्थान को भी कुछ अनुरंजक रूप प्रदान करती है। विलग जान माहो उधव प्यारे, व मथुरा काजर की कोठरी जे या वही ते कारे, तुम कारे सुफल कसुत कारे, कारे मधुप भवारे। गोपियाँ कहती हैं तुम्हारा दोष नहीं है, वह स्थान ही ऐसा हो रहा है जहाँ से तुम आ रहे हो। एक कृष्ण से वहाँ ऐसी कृष्णता छा रही है कि तुम काले हो, अक्रूर हो गए हो थे, वे भी ऐसे ही काले थे, और यह घूमता हुआ भौरा भी जो बहुत दिन वहाँ न रहा होगा, घूमता फिरता कभी जा पड़ा होगा, वैसा ही काला है। उद्धव अपने ज्ञानोपदेश की भूमिका ही बांध रहे थे कि गोपियों के मन में कुछ शंका होने लगी। मधुकर देख श्यामतन तेरो, हर मुख की सुन मीठी बात, डरपत है मन मेरो, अब लो कौन हेतु गावत है, हम आगे यह गीत, सूर इते सो गारी कहा है, जो पाए त्रिगुण अतीत। त्रिगुणातीत होते होंगे हमें इससे क्या, तुम क्यों बार बार यह कहता है कि कुछ भेद जान नहीं पड़ता। उद्धव को कभी एक भोला भाला आदमी ठहराकर गोपियां अनुमान करती हैं कि कहीं श्री कृष्ण यह संदेशा उनके हाथ भेजकर हंसी नहीं की हो और ये इसे ठीक मानकर बक बक कर रहे हों। यही बात पता लगाने के लिए उद्धव से पूछती हैं, अच्छा यह तो बताओ कि जब वे तुम्हें संदेश कहकर भेजने लगे थे तब कुछ मुस्कराए भी थे। उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, सच कहो तुमको अपनी सौ बूझती बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठाए तब ने कहूँ मुस्काने। यह अनुमान था कि वितर्क रागात्मिकता वृत्ति से सर्वथा निर्लिप्त शुद्ध बुद्धि की क्रिया नहीं है, संचारी मति के समान यह भी भाव प्रेरित है, हृदय की राग द्वेष वृत्ति से संबंध रखता है, किसी बात को मानने न मानने की भी रुचि हुआ करती है। कृष्ण के प्रेम को गोपियाँ छोड़ना नहीं चाहती, अतः यह बात मानने से उनका जी नहीं करता कि कृष्ण ने ऐसे अप्रिय संदेश भेजा होगा। जिस बात को कोई मानना नहीं चाहता उसको न मानने के वह हजार रास्ते ढूंढता है। बस गोपियों के अंतःकरण की यही स्थिति ऊपर के पद में दिखाई गई है। उद्धव के ज्ञान योग की गोपियाँ कितनी कद्र करती हैं अब थोड़ा यह भी देखिए। जो ऐसी चीज ढोए फिरता है जिसे बहुत से लोग बिल्कुल निकम्मा समझ रहे हैं, उसे वे बेवकूफ समझ कर ही नहीं रह जाते बल्कि उसे बनाने को भी कभी कभी पूरी कल्पना खर्च करते हैं। बेवकूफी पर हंसने का रिवाज बहुत पुराना है, लोग बना बनाया बेवकूफ पाकर हंसते भी हैं और हंसने के लिए बेवकूफ बनाते भी हैं। हास्य की प्रेरणा ही कल्पना को मूर्ख का स्वरूप जोड़ने और वाणी को कुछ शब्द रचना करने में तत्पर करती है। गोपियाँ कुछ कुछ इसी प्रेरणावश उद्धव के से नीचे लिखी बात उस समय कहती हैं जब वे घबरा कर उठने को तैयार होते हैं। उधो जोग विसर जानी जाहो, बाधो गांठ कहो जानी छूटे, फिर पाछे पछताहूँ, ऐसी वस्तु अनुपम मधुकर मरम न जाने, और प्रजवासिन के ना ही काम के तुम्हारे ही है ठौर। देखना अपना योग कहीं भूल न जाना, गांठ में बांध रखो, कहीं छूट जाए तो फिर पीछे पछताओगे। ऐसी वस्तु जिसका मर्म सिवा तुम्हारे या तुम्हारे ऐसे दो चार फालतू दिमाग वालों के और कोई जान ही नहीं सकता, ब्रजवासियों की किसी काम की नहीं है। ऐसी फालतू चीज के लिए तुम्हारे ही यहाँ जगह होगी, यहाँ नहीं है। इसके सखा के दर्शन से विरह से मुरझाए हुए गोपियों में इतनी चपलता आ गई कि वे लड़कों की तरह चिढ़ाने को तैयार हो गई। उसके दर्शन में उनमें कितनी सजीवता आती है यह समझने की बात है। ज्ञान योग पर भी कैसी मीठी मीठी चुटकी है, इसे केवल एक आध आदमी समझते हैं। वह वस्तु सबके काम की नहीं हो सकती। उद्धव जब उसे गले लगाते हैं तब गोपियों का भाव बदलता है और वे उन्हें सीधे साधे बेवकूफ नहीं लगते बल्कि एक ठग या धूर्त के रूप में दिखाई पड़ते हैं। यह भावांतर उनकी कल्पना को कैसा चित्र खड़ा करने में लगता है देखिए। कौ आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप यह ज्ञान जोगी की ब्रजमय आय उतारी, हाटक देख कर हाटक मांगत मोरी निपट सुधारी। खौ उधव ब्रज में बैठ करी, यह निर्गुण निर्मूल गाठरी अब किन करहूँ खरी, नफा जान के यहाँ लय आए सब वस्तु अकरी। उदाहरण ख में निर्मूल शब्द कितना अर्थगर्भित है। साधारण दृष्टि से तो यही अर्थ दिखाई पड़ता है कि बिना जड़ पत्ते की वस्तु वाली अर्थात जिसमें कुछ भी नहीं है शून्य है, पर साथ ही इस अर्थ का भी पूरा संकेत मिलता है जिसमें कुछ मूलधन या पास की पूंजी नहीं लगी है, अर्थात वह केवल किसी के मुंह से सुनकर इकट्ठा कर ली गई है, उसमें हृदय नहीं लगा है, लग ही नहीं सकता जो मनुष्य की असल पूंजी है। सूर्य यहाँ जिस बात को इस मार्मिक ढंग से कहा है उसी गोसा में तुलसीदास ने दार्शनिक निरूपण के ढंग पर स्वानुभूति और वाक्य ज्ञान का भेद बताकर कहा है। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावै कोई, जिम गृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं होई। पूर्ण तत्वाभास केवल कोरी बुद्धि की क्रिया से नहीं हो सकता, यह बात शंकराचार्य ऐसे प्रचंड बुद्धि के दार्शनिक को भी मानने पड़ी थी। परमार्थिक सत्ता के बोध की संभावना उन्होंने बहुत कुछ स्वानुभूति द्वारा कही है, केवल शब्द बोध या तर्क द्वारा नहीं। वर्तमान समय का सबसे आगे बढ़ा हुआ दार्शनिक बर्गसन भी कोरी बुद्धि क्रिया को एकांगी भ्रांतिजनक और असमर्थ बताकर स्वानुभूति की ओर संकेत कर रहा है। एडवर्ड कारपेटर ने भी अपनी प्रसिद्ध अंग्रेजी पुस्तक सिविलाइजेशन इट्स कॉजेस एंड क्योर में वर्तमान समय की उस दार्शनिक प्रवृत्ति का विरोध किया है जिसमें बुद्धि क्रिया ही सब कुछ मानी गई है। मनुष्य के हृदय पक्ष तथा स्वानुभूति पक्ष का एकदम तिरस्कार कर दिया गया है, अपने शब्द बोध की प्रणाली को अज्ञान प्रणाली कहा है। वर्तमान काल के प्रसिद्ध उर्दू शायर अकबर ने भी बुद्धि रोग से छुटकारा पाने की खुशी जाहिर की है, मैं मरीजे होश था मस्ती ने अच्छा कर दिया। यहीं पर तुलसी सूर आदि भक्तों का भी रहा है। गुस्सा में तुलसीदास जी ने स्पष्ट कह दिया है कि अज्ञान है कि द्वारा शब्द बोध के सारे तो ज्ञान की बातें कही जाती हैं। वे ललकार कर कहते हैं, ज्ञान कहे अज्ञान बिन सो गुरु तुलसीदास। जब उद्धव की बकवास बंद नहीं होती वे ऐसी बातें कहते ही जाते हैं तो गोपियों को वे सिर पैर की बात लगती है, उनका कुछ स्पष्ट अर्थ नहीं जान पड़ता। तब ये ऊब कर झुंझला उड़ती हैं, कहती हैं तुझसे कौन सिर पच्च करे, ऐसे को ठाली बैठी है तीसो मूड खपावे, यह कह दिया कि तेरा सिर फटकना व्यर्थ है। कत श्रम करत सुनत हो यहाँ है, होत ज्यों बन को रोयो, सूर इत इत समझत नाहे निपट दई को खोयो, निपट दई को खोयो। स्त्रियों की झुंझलाहट के कैसे स्वाभाविक वचन है। अंत में वे उद्धव पर इस प्रकार झल्ला उठती हैं, कौ उद्धव राखत हो पति तेरी, या ते जाहु दूर हूँ आगे ते देखत आँख मरत है मेरी, ते तो तैसे ही दो बड़े है वह अहिर वह कंस की चेरी। ख रहुरे मधुकर रहु मतवारे, कहाँ करो निर्गुण लेकर हो जीव हूँ काना हमारे। क्या यह कहने की आवश्यकता है कि सारी झुंझलाहट और झल्लाहट की तह में प्रेम की एक अखंड धारा बह रही है, या झल्लाहट बराबर नहीं रहती, थोड़ी देर में शांत भाव आ जाता है और मति का उदय दिखाई पड़ता है। क ऊध जो तुम हम ही सुनायो, सो हम निपट कठिनई करी कही या मन को समझायो, जुगुति जतन करी हम ताही गही, सुपत पंथ लव लायो, भटकी फिरैयो मोहित के खग ज्यो पुनि फिरी हरि पय आयो। ख मधुकर हम जो कहो करे पठे है गोपाल कृपा कह आयसु ते न टरे रसना बारी फेर नव खंड कह दय निर्गुण के साथ इतनी तनक बिलक जाने वा न हूँ अखियाँ ना ही हाथ। ध्यान रखना चाहिए कि मति संचारी भाव है, बुद्धि की स्वतंत्र निरुक्ति क्रिया नहीं है, या कृष्ण के प्रेम का आधार लिए हुए हैं। कृष्ण का उपदेश गोपियों के मन में बैठा हो या बात नहीं है, वे बड़ी मुश्किल से उसे मानने का जो प्रयत्न कर रही हैं वह केवल इस ख्याल से कि कृष्ण ने कहलवाया है और उनके खास दोस्त कर रहे हैं। यह ख्याल आते ही फिर तो वे भी अपनी व्यवस्था का अनुभव मात्र सामने रखती हैं। वह कहती हैं कि जबाना तो कहो, हम अभी निर्गुण के हवाले कर दें। तुम्हारी तरह मुंह से निर्गुण निर्गुण बका करें या जबान ही काट डालें, सब दिन के लिए मौन हो जाएं, पर आँखों से हम लाचार हैं, वे दर्शन की लालसा नहीं छोड़ सकती। कभी कभी उनकी वृत्ति अत्यंत दीन और नम्र हो जाती है और उनके मुंह से ऐसे वचन निकलते हैं। कौ ऊधो हम है तुम्हारी दासी, काहे को कटु वचन कहत हो करत आपने हासी। खौ अपने मन सुरति करत रही भी, ऊधव इतने समय बात श्यामसो समय पाए कही भी, घूस बसत की चुक हमारी कछु न जिय गही भी। कहाँ वह उग्रता और कहाँ यह अदब से भरी दीनता। ऐसे ही दशा के बीच राधा अपने सखी से अपनी उस विवलता या मोह की बात कहती है, जिसके कारण उद्धव के आगे कुछ कहते नहीं बनता। सदेश कैसे कई अब कहो, इन नैनन यातन को पहरो अबलो देती रहो, जो कछ विचार होय और अंतर रच रच सोच कहो, मुख आनत उद्धव तन चितवन न सो विचार न हो। इस प्रकार वे अपने दुख दशा कहते कहते थक जाती है। फिर वे सोचते हैं कि हमारी दशा पर कृष्ण कदाचित इतना ध्यान न दें। इससे वे नंद और यशोदा की व्याकुलता का वर्णन करती है, गायों का दुख सुनती हैं कि कदाचित उन्हीं का ख्याल करके वे एक बार आ जाए। उद्धव इतनी कहियो जाए, आती पिसगात भई है तुम बिन बहुत दुखारी गाय, जल समूह बरसत अखियन ते हुंकत लीन है नाव, जहाँ जहाँ गो दोहन करते ढूंढत सोई ठाव। कृष्ण किसी प्रकार आवे, बस यही अभिलाष सबसे ऊपर है। वे किसी के ख्याल से आवे आवे तो सही, बदले में कृष्ण भी वैसा ही प्रेम रखे, इतनी बड़ी बात की आशा गोपियों से अब नहीं करते बनती। अब तो वे बहुत थोड़ी में संतुष्ट होने को तैयार हैं, केवल उनका दर्शन पा जाए बस। यह तोष वृत्ति नैराश्यजन्य है। नीचे के पद में जो क्षमा या उदारता है, वह भी अभाव के दुख की ही ओर आती हुई जान पड़ती है। उद्धव कहियो यह संदेश, लोग कहत कुबजा रस माते ताते तुम सकुचो जान लेस। इसके न रहने से जीवन की धारा ही खंडित जान पड़ती है, उसके दोषों का ध्यान कैसा। वह आवे चाहे दो बार, दो चार और दोष भी साथ लगाता आवे, यह चीज की वह कदर है जो उसके कहने न रहने पर मालूम होती है। वियोग के अंतर्गत यह हृदय की बड़ी ही उदार दशा है। इसमें दृष्टि दोषों की ओर जाती ही नहीं, यह दशा दूसरों के दोषों को भी आंख के सामने से नहीं हटाती, बल्कि स्वयं अपने में दोष समझाने लगती है। प्रेम द्वारा आत्मशुद्धि का यह विधान कैसा अचूक है। राधा अपनी एक एक त्रुटि का स्मरण या कल्पना करती है और व्याकुल होती है। मेरे मन इतनी सूल रही, वह बतियां छतियां लिखी राख जय नंदलाल कही, एक दिवस मेरे गृह आए मैं ही मथति दही, देख तीन है मैं मान की ओ सकी सो हरि गुसा गही। कभी कभी उन्हें अपने प्रेम की ही कमी पर पछतावा होता है, कहाँ लगी मान ये अपनी चूक, बिन गोपाल उद्धव मेरी छाती हुए न गई द्वय टूक। वियोग गोपियों के हृदय को कभी कभी कैसा कोमल उदार और असहिष्णु कर देता है, इसकी कैसी अनुताप मिश्रित सूचना निम्न पद में है। फिर ब्रज बासह गोकुलनाथ, बहुरिन तुम ही जगाय पठव गोधनन के साथ, बरजौ नौ माखन खात कबहु देह देन लुटाय, कबहु न देह उराहनो जसुमत के आगे जाय, दौरी दामन देहुगे लकुटिन जसुमति पान, चोरी न देह उधार किए अवगुण न कही अवान करियह न तुम सो मानहट हठियह न मांगत दान कहियो न मृद मुरली बजावन करन तुम सो गान कहियो न चरणन देन जावक गुहन बेन फूल कतिह न कर सिंगार बटतर वसन जमुना कूल भुज भूषण जुत कंध धरि कै रास नाहि कराओ हो संकेत निकुंज बसिक दुति मुख न बुलाओ एक बार जो दरस दीखा वह प्रीति पंथ बसाय करो चमर चढ़ाय आसन नयन अंग हंग लाय देहु दर्शन नंद नंदन मिलन की ही आस सुर प्रभु की कुमर छवि को मरत लोचन प्यास। इन मर्म भरी भूली भाली प्रतिज्ञाओं में जो अनुमान अधीनता और त्याग के उद्गार हैं उनका यह प्रेम गर्व सूचक वाक्य कही न चरण देन जावक स्मरणीय मान विषय होने के कारण विरोधी नहीं होते। उक्त पद में ध्यान देने की सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम अब किस प्रकार चपल क्रीड़ा वृत्ति छोड़ शांत आराधना के रूप में पारित होने को तैयार हो गए हैं। यह प्रेम का भक्ति में पर्यावसान है। सुख क्रीड़ा त्याग रूप वृत्ति पक्ष दिखाकर मानव सूर्य ने भक्ति मार्ग के शांत रस का स्वरूप दिखाया है। आत्मसर्ग की पराकाष्ठा वहां समझनी चाहिए जहां प्रेमी निराश होकर प्रिय के दर्शन का आग्रह भी छोड़ देता है। इस अवस्था में वह अपने के लिए प्रिय से कुछ कहना चाहना छोड़ देता है और उसका प्रेम इस अविचल कामना के रूप में आ जाता है कि प्रिय चाहे जहाँ रहे सुख से रहे उसका बाल भी बाका न हो। जह जहाँ रहो राज करो तह तह लेह कोट सिर भार यह शीश हम देह सूर सुन नात खलय जिन बार। रोहन मात की गहरी व्याकुलता के बीच में भी यह कामना बराबर बने रहती है। गोपियों को वियोग में चंद्रमा तपते सूर्य गाय बछड़े बाघ और भेड़िया जान पड़ रहे हैं। वह दौर से कहती हैं तुम तो यहाँ की दशा देख ही रहे हो कह देना कि जब तक ये सब आफतें यहाँ से टल न जाए तब तक वे वहीं रहें ऐसी हालत में यहाँ न आवे। उद्धव इतनी जाय कहो या वल्लभ कहते हरि सो यो दिन मधुपुरी रहो आज काल तुम हो देखत हो तपत तरणी समचंद सुंदर श्याम परम कोमल तनु क्यों सहिब नंद नंद मधुर मोर पिक परश प्रबल अति वन उपवन चढ़ी बोलत सिंह ब्रिकन समन गाय वृक्ष ब्रज बीथिन बीथिन डोलत तुम तो परम साधु को मल मन जानत हो सब रीत सूर्य श्याम को क्यों बोले ब्रज फिर उठारे यह ईत। विरही घोर दुख सहता हुआ भी यह कभी मन में नहीं लाता कि यह प्रेम दूर हो जाता तो अच्छा था। कोई मंत्र शास्त्री आकर कहे अच्छा हम वह प्रेम ही मंत्र बल से उड़ाए देते हैं जो सारे बछेड़े की जड़ हुई है तो कोई भी योगी शायद ही तैयार होगा। चाहे वह दुनिया भर से कहता फिरे कि प्रीति करी काह सुख न लहियो और दुखों के वियोग दुख में यही विशेषता है। वियोगी रस्सी तुड़ाकर प्रेम के बाड़े के बाहर नहीं भागना चाहता। गोपियाँ प्रेम क्षेत्र के बाहर की किसी वस्तु के प्रति कैसी उपेक्षा या लापरवाही प्रकट करती हैं मधुकर कौन मनायो मानय सिखवहु तिन्हीं समाधि की बातें जय हैं लोग सयान है हम अपने ब्रज ऐसे ही बसे हैं विरह वाय वायुरान है। वे उद्धव को उल्टा समझाती है कि विरह से भी प्रेम की पुष्टि होती है वह पक्का होता है। उद्धव विरहो प्रेम करे जो बिनु पुट पट गहन रंग ही पुट गहे रसही परय जो आवो घट दहत अनल तुम तो पुण्य अभी भरे। ऐसे प्रेम सिद्धांत का संदेश मात्र समझ कर ना छोड़िए भाव के स्वरूप पर भी ध्यान दीजिए। यह प्रतिकूल स्थिति की अनिवार्यता से उत्पन्न आत्म समाधान की स्वाभाविक वृत्ति है। एक अफीमची घोड़ी पर सवार कहीं जा रहे थे जिधर उन्हें जाना था उधर का रास्ता छोड़ घोड़ी दूसरी ओर चलने लगी। जब बहुत मोड़ने पर भी वह न मुड़ी तब उन्होंने बाघ ढीली करके कहा अच्छा चल इधर भी मेरा काम है। इस प्रकार की अंतर्वृत्ति इस वाक्य में भी झलकती है। हम तो दूह भाति पल पायो जो ब्रजनाथ मिलो तव तो नीको नातरु जग बस जस गायो। यह तो आत्म समाधान हुआ। दूसरे की कोई बात न मानने पर मन में कुछ खटक सी रहती है कि इसे दुख पहुंचा होगा। अपने इस खटक को मिटाने के लिए दूसरे के समाधान की प्रवृत्ति होती है। जैसे ऊधो मन माने की बात जरत पतंग दीप में जैसे औ फिरी फिरी लपटात अरहत चकोर पहुमे पर मधुकर शशि आकाश भरमात। इस समाधान के अतिरिक्त धृति की भी व्यंजना देखिए। अब हमरे जिए बैठियो यह पद होनी होई सो हो, मिट गयो मान परेख उदय हृदय हतो से हो। भ्रमण गीत में खुबजा नाम भी बार बार आया है, इसके कारण असूया की बड़ी बड़ी वक्तापूर्ण व्यंजनाएँ मिलती हैं। जब उद्धव कृष्ण का संदेश कहकर अपने ज्ञान चर्चा छेड़ते हैं, तभी गोपियाँ कहती हैं कि यह कृष्ण का संदेश नहीं जान पड़ता, यह तो उसी कुबड़ी पीठ वाले की कारस्तानी मालूम पड़ती है। मधुकर कान कहीं नहीं हो ही, यह तो नई सखी सिखई है निज अनुराग बरही, रुचि राखी कुबरी पीठ पर ये बात चकचोही। फिर भी असूया का भाव इन साफ शब्दों में प्रकट करती है कि इस समय कृष्ण की चहेती कुब्जा का ही जीवन सफल है। जीवन मऊचाही कुनी को, दरस परस दिन रात करत है कान प्यारो पी को। वे उद्धव से कहते हैं कि तुम अपनी ज्ञान कथा वहीं रखो जहाँ इस समय खूब आनंद मंगल हो रहा है, यहाँ जगह नहीं है। या कह यहाँ ठौरना ही लय राखो जहाँ सुचैन, हम सब सखी गोपाल उपासिन हम सब बातें छाड़ी, सूर मधुप लय राखो मधुपुरी कुब्जा के घर गाड़ी। वहीं कुब्जा के घर गाड़ रखो, स्त्रियों के मुख कैसे जले कटे स्वाभाविक शब्द हैं। संदेश का उत्तर थोड़े ही वे यह देती है कि यदि यह ज्ञान योग ऐसी उत्तम वस्तु है तो इसे कुबड़ी को ही दे दो, हमारे सामने वह रूप ही कर दो, हम अपना उसी को देखा करें। पालागो कहियो मोहन सो जोग कुबरी दीजय, सूर्यदास प्रभु रूप निहार है हमारे सम्मुख कीजय। विकृष्ण जिन्होंने इतनी गोपियों का मन चुराया, एक साधारण कुबड़ी दासी के प्रेम जाल में फंस गए। इस पर देखिए कैसी मीठी चुटकी और कैसा कुतूहलपूर्ण कृत्रिम संतोष प्रकाशित किया गया है। बरुए कुबजा भलो कियो, सुन सुन समाचार उधव मुँह कछुक सिरात हियो, जा कौ गुण गति नाम रूप हरि हरियो फिर न दियो, तिन अपनो मन हरत न जान्यो हंसी हंसी लोग जियो। शुभ हृदय की कैसी भाव प्रेरित वचन रचना है, इसी प्रकार की विदग्धता और वक्रता उद्धव के निराकार शब्द पर आगे गोपियों की विलक्षण उक्ति में दिखाई पड़ती है। वे राधा को संबोधन करके कहती हैं, मोहन मांग्यो अपनो रूप, या ब्रज बसत अचय तुम बैठी ताबिनु तहां अनिरूप। कृष्ण का रूप तो तुम पी गई हो, वह तुम्हारे हृदय में रह गया है। कोष्ठक में तुम निरंतर उनके रूप का ध्यान करती रहती हो, कोष्ठक बन, इससे वे वहाँ निरूपित बिना आकार के हो रहे हैं। उद्धव के द्वारा उन्होंने अपना ही रूप मांग भेजा है कि निराकारता मिटे। तुम जो रात दिन उनके रूप का ध्यान करती रहती हो, उसे भी उद्धव छुड़ाने आए हैं। यह बात कितने टेढ़े ढंग से किस वक्रता के साथ प्रकट की गई है, वाणी ने यह वक्रता हृदय की प्रेरणा से उठते हुए भावों की लपेट में ग्रहण की है, इसकी तह में भावस्रोत छिपा हुआ है। ऐसे ही बागपन के साथ वे कृष्ण के रूप का ध्यान हृदय से न निकलने का कारण बताती हैं। उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसा होने के सत नहीं उधव, तिरछा हवाई जो अड़े। जो लंबी चीज किसी बर्तन में जाकर तिरछी हो जाएगी वो बड़ी मुश्किल से निकलेगी। कृष्ण की मूर्ति का आराधना जब ध्यान करने लगती है तब उनकी त्रिभंगी मूर्ति ही ध्यान में आती है, इसी से यह मन में अटक सी गई है, निकलती नहीं है। वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है इस वही वाक्य होती है, वही काव्य होती है। वक्रोक्ति काव्य जीवतम से यही वक्रता अभिप्रेत है, वक्रोक्ति अलंकार रहे। भावोद्रेक से उक्ति में जो एक प्रकार का वाक्पन आ जाता है, तात्पर्य कथन के सीधे मार्ग को छोड़कर वचन जो एक भिन्न प्रणाली ग्रहण करते हैं, उसी की रमणीयता काव्य की रमणीयता के भीतर आ सकती है। भाव प्रसूत वचन रचना में ही भाव या भावना तीव्र करने की क्षमता पाई जाती है। कोई मनुष्य किसी को बड़ा बहादुर कह रहा है, दूसरे से सुनकर रहा नहीं जाता, वह कहता है हाँ तभी न बिल्ली देखकर गिर पड़े थे। कहने वाला सीधी तरह से यह कह सकता था वह बहादुर नहीं भारी डरपोक है, बिल्ली देखकर डर जाता है, पर इस सीधे वाक्य में उसका संतोष नहीं हो सकता था। वीरों को वीर सुनकर जो उपहास उमंग उसके हृदय में उठी, उसने श्रोताओं को भी उपहास उन्मुख करने के लिए बिल्ली से डरने की बहादुरी के सबूत से पेश करा दिया। काव्य की उक्ति का लक्ष्य किसी वस्तु या विषय का बोध कराना नहीं, बल्कि उस वस्तु या विषय के संबंध में कोई भाव या रागात्मक स्थिति उत्पन्न कराना होता है। तार्किक जिस प्रकार श्रोता को अपने विचार पद्धति पर लाना चाहता है, उसी प्रकार कवि अपनी भाव पद्धति पर। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विदग्धता वहीं तक काव्य उपयोगी हो सकती है जहाँ तक भाव प्रेरित हो, जहाँ तक उसका कारण कोई भाव या कम से कम कोई रागात्मक दशा हो। विदग्धा नायिका की वचन विदग्धता या क्रिया विदग्धता में काव्य की रमणीयता इसलिए होती है कि उसकी तह में रतिभाव वर्तमान रहता है। किसी पुराने चोर या चाय की विदग्धता का व्यवहार वर्णन काव्य के अंतर्गत नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें रसात्मकता नहीं। सूर ने कई स्थानों पर कृष्ण काव्य की वचन विदग्धता दिखाई है, जैसे मैं अपने मंदिर की कोने माखन राख्यो जान, सही जाय तुम्हारे ढोड़ा लीने है पहचान, मुझे ग्वालिन घर में आयो नेकुन शंका मान, सूर्य श्याम यह उतर बनायो चीढ़ी काढ़त पान, चीटी काढ़त पानी। इस विदग्धता में जो रमणीयता है वह इसी प्रकार की जिसे बाल प्रकृति का चित्रण होता है और यह भय प्रेरित है। अब सूर्य ने अपने सिद्धांत पक्ष का जो काव्यात्मक निरूपण किया है थोड़ा उसे भी दिखाकर इस प्रबंध को समाप्त करते हैं। उद्धव के ज्ञान योग का पूरा लेक्चर सुनकर और उसे अपने सीधे साधे प्रेम मार्ग की अपेक्षा दुर्दम और दुर्बोध जानकर गोपियाँ कहती हैं, काहे को रूपत मारग सूध हो, सुनहु मधुप निरुगुण कंटक तेराज पंत क्यों रूद हो, ताको कहाँ परेखो कीजे जानत छाछ न दूध हो, सूर मूर अक्रूर गए लय ब्याज निवेरत ऊध हो। हम अपने प्रेम या भक्ति के सीधे और चौड़े राजमार्ग पर जा रहे हैं, उस मार्ग में तुम ये निर्गुण रूपी कांटे क्यों बिछाते हो, हमारा रास्ता क्यों रोकते हो? जैसे तुम्हारे लिए रास्ता है वैसे हमारे लिए भी है, तुम अपने रास्ते चलो, अपने रास्ते, एक दूसरे का रास्ता रोकने क्यों जाएं? भक्ति और ज्ञान के संबंध में सूर्य का यही मत समझिए, वे ज्ञान के विरोधी नहीं भक्ति विरोधी ज्ञान के विरोधी हैं। गोपियों से वे उद्धव की बातों के अंतिम उत्तर के रूप में कहलाते हैं, बार बार ये वचन निवारो भक्ति विरोधी ज्ञान तिहारो। मनुष्य की पूर्ण अभिव्यक्ति रगात्मकता वृत्ति और बोध वृत्ति दोनों के मूल में है, अतः इनमें किसी का निषेध उचित नहीं है। कोई एक की ओर मुख्यतः पवित्र रहता है, कोई दूसरे की ओर। कुछ ऐसे पूर्ण प्रज्ञ भी होते हैं जिनमें हृदय पक्ष और बुद्धि पक्ष दोनों की पूर्णता रहती है। वल्लभाचार्य जी ऐसे ही थे। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्यों में थे। वल्लभाचार्य जी ज्ञान मार्ग की ओर वेदांत की एक शाखा के प्रवर्तक थे और भक्ति मार्ग की ओर एक अत्यंत प्रेमोपासक संप्रदाय के। वल्लभाचार्य जी का अद्वैतवाद शुद्धाद्वैत कहलाता है। रामानुजाचार्य जी ने अद्वैत को दो पक्षों से युक्त या विशिष्ट दिखाया था। वल्लभ ने यह विशिष्टता हटाकर ब्रह्म को फिर शुद्ध किया। उन्होंने निरूपित किया कि सच्चित और आनंद स्वरूप ब्रह्म अपने इच्छानुसार इन तीनों स्वरूपों का आविर्भाव और तिरोभाव करता रहता है। जड़ जगत भी ब्रह्म ही है, वह अपने चित्त और आनंद स्वरूपों का पूर्ण तिरोभाव किए हुए तथा सत स्वरूप का कुछ अंशत आविर्भाव किए हुए। चेतन जगत ही भी ब्रह्म ही है, इसमें सच्चित आनंद इन तीनों स्वरूपों का कुछ आविर्भाव और कुछ तिरोभाव रहता है। इस सिद्धांत में मायात्मक जगत मिथ्या नहीं माना गया है। माया ब्रह्म की ही शक्ति मानी गई है जो उसी की इच्छा से विभक्त होती है। जीव अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप को तभी प्राप्त करता है जब आविर्भाव और तिरोभाव दोनों मिट जाते हैं, और यह बात केवल ईश्वर के अनुग्रह से ही, जिसे पुष्टि या पोषण कहते हैं, हो सकती है। इस अनुग्रह की प्राप्ति के लिए वल्लभाचार्य ने एक विस्तृत उपासना पद्धति भी चलाई जिसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। रामानुज और वल्लभ दोनों का मोक्ष कैवल्य से भिन्न है। रामानुज की मुक्ति सारूप्य या सालोक्य मुक्ति है, वल्लभ की सायुज्य। जिस प्रकार वल्लभ की मुक्ति प्रेम के चरमानंद की दशा है, उसी प्रकार उनके उपासक की प्रेम मूर्ति कृष्ण है। जगत के नाना रूपों से ब्रह्म की जो प्रत्यक्ष सत्ता दिखाई पड़ी है, उसका जो सगुण स्वरूप चारों ओर भाषित हो रहा है, उसका बार बार निषेध और निर्गुण ब्रह्म का अत्यंत सूक्ष्म निरूपण सुनकर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम व्यर्थ तिनके की ओट में इतना भारी दमकता हुआ सुमेरु छुपाने का उद्योग कर रहे हो। सुमरे कथा कौन निर्गुण की, रचि पचि बात बनावत, सगुण सुमेरु प्रकट दिखियत तुम तृण की ओट दुरावत। उद्धव के ब्रह्म निरूपण का कुछ भी आशा गोपियों को समझ में नहीं आता। वे पूछती हैं कि वह बिना रूप रेखा वाले तुम्हें कभी प्रत्यक्ष भी होता है, तुम्हें आकर्षित और मोहित भी करता है? रे न रूप वरन जाके नाही ताको हमें बतावत, अपनी कहो दरस वैसे को तुम कबहु हो पावत। मुरली अधर धरत है सो पुन गोधन बन बन चारत, नयन विशाल भव बंकट कटि देख्यो कबहु निहारत। तन त्रिभंग करी नटवर बपुधरी पिताम्बर तेह सोहत, सूर्य श्याम ज्यो देत हमें सुख त्यों तुमको सो मोहत। बतावत पद में असंगतकता किस प्रकार व्यंग है, जिनकी न कोई रूपरेखा न वर्ण, उसे बताना या बताने का प्रयत्न करना असंगत ही है। बताए हुए वस्तु जाति है जिसका कुछ विशिष्ट रूप स्वरूप होता है। पूर्णतया स्पष्ट और निर्दिष्ट अर्थ व्यक्त न होने पर भी कुछ शब्दों और वाक्यों को बार बार दोहराना ही तो किसी वस्तु का सम्यक साक्षात्कार नहीं है। यदि किसी प्रकार मान भी लें कि तुमने यह निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप को समझा है, तो यह बताओ कि वह स्वरूप तुम्हारे मन को मोहता भी है, तुम्हें कुछ आकर्षित भी करता है? यदि नहीं तो वह व्यवहार या उपासना के योग्य नहीं, केवल तर्क वितर्क के लिए ही है। गोपियाँ आग्रह के साथ कहती हैं कि इसमें तुम मन लगाने को कहते हो, उसकी कोई ऐसी बात या ऐसा लक्षण तो बताओ जिस पर मन ठहराया जा सके। पहले तो देश और काल के बीच उसका कोई स्थान हमारे लिए निर्दिष्ट कर दो। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए सहुदे बुझति सीच न हासी। स्त्रियों के कैसे स्वाभाविक हाव-भाव भरे ये वचन हैं। कसम है हम ठीक पूछती हैं, हंसी नहीं कि तुम्हारा निर्गुण कहाँ कराने वाला है। कुछ विनोद, कुछ चपलता, कुछ भोलापन, कुछ घनिष्ठता, कितनी बातें छोटे से वाक्य में टपकती हैं। ज्ञान मार्गी वेदांतियों दार्शनिकों के सिद्धांतों की लोक अव्यवहारिकता तथा उनके बेडौल और भड़कीले शब्दों के अर्थों की अस्पष्टता और दुर्बोधता आदि की ओर गोपियों की जल्लाहट कैसा संकेत कर रही है। याकी सीख सुनो ब्रज कोरे, जाकी रहिन कहन अनमिल अति, कहत समुझ अति थोरे। इसकी बात कौन सुने जो कहता है कुछ है और करता कुछ है, तथा ऐसे ही बातें मुंह से निकालता है जिनको खुद बहुत ही कम समझता है। पिछले कथन से सबके नहीं तो अधिकांश ब्रह्म ज्ञान छांटने वालों के स्वरूप का चित्रण हो जाता है। वे बहुत से बधे हुए वाक्य और शब्दों को भी भड़ी झड़ी बधा करते हैं जिनके अर्थ की स्पष्ट धारणा उन्हें कुछ भी नहीं रहती। बिना समझे हुई बातें बककर वे लोगों के बीच बड़े समझदार बना करते हैं। निर्गुण की निरसता और सगुण की सरलता किस प्रकार अपने हृदय के सच्चे अनुभव के रूप में गोपियाँ उद्धव के सामने या जगत के सामने रखती हैं। ऊनो कर्म की ओ मातुल, बधि मदिरा मत प्रमाद, सूर्य श्याम एत अवगुण में निर्गुण ते अति स्वाद। ज्ञान मार्ग गोपियों ने तिरस्कार तो किया, पर यह सोच कर कि कहीं उद्धव का जी न दुखी हो वे उनका समाधान भी करती हैं। वे समझाती हैं कि ज्ञान मार्ग को हम बुरा नहीं कहती हैं, वह अत्यंत श्रेष्ठ मार्ग है, पर अपने रुचि से हम क्या करें, वह हमारे अनुकूल नहीं पड़ता। रुचि भिन्नता दो समान वस्तुओं में विभेद करके एक ओर आकर्षित करती है और दूसरी ओर से दूर रहती है। उद्धव तुम अति चतुर सुजान, द्वैलोचन जो बिरद किए श्रुति गावत एक समान, वेद चकोर कियो तिनहु में विधु प्रीतम रिपु भान। उद्धव अपने से कहते जा रहे हैं कि बीच में कोयल बोल उठती है। गोपियाँ चट उद्धव का ध्यान उधर ले जाती हैं। उद्धव कोकिल कूजत कानन, हम तुमको उपदेश करत हों भस्म लगावन आनन। वह सुनो, कोयल कूक रही है, तुम तो हमें राख मलने को कह रहे हो, उधर प्रकृति क्या कह रही है वह भी सुनो। भ्रमर गीत की भूमिका के रूप में ही यहाँ असुर के संबंध में कुछ विचार संक्षेप में प्रकट किए गए हैं। आशा है विस्तृत आलोचना का अवसर भी कभी मिलेगा। रामचंद्र शुक्ल, गुरुधाम, काशी, श्री पंचमी, संवत 1982।